मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 28 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही फ्रेंड्स मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च 2019 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सोहन कुमार, आपका गांव है तेयाय, जिला बेगूसराय बिहार से। पंकज कुमार यादव, आप हैं घुथीबर झारखंड से। सौरभ तिवारी, आपका गांव है डेंगरा, जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से। पवन कुमार, आप ब्रह्मपुर बिहार से हैं। और अनुज कुमार वर्मा, आपका गांव है गुठनी, जिला सीवान बिहार से। तो सोहन, पंकज, सौरभ, पवन और अनुज, आप 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं इनफैक्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि मैं अर्थशास्त्र को कैसे समझा जाए इस पर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी अर्जेंटीना के लिए रवाना हो गए, मतलब अब तो आप पहुंच ही गए होंगे। अर्जेंटीना जो लैटिन अमेरिका का देश है, महाद्वीप के रूप में कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश अर्जेंटीना, वहां वो G20 ग्रुप ऑफ 20 देशों की जो बैठक हो रही है जिसे शिखर सम्मेलन कहते हैं। शिखर का देखिए मतलब होता है चोटी, टॉप, है ना, एवरेस्ट की चोटी, टॉप पर। तो शिखर सम्मेलन का मतलब ही होता है कि जहां राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे, है ना, सरकार के जो प्रमुख है, मतलब बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग, इसे हम कहते हैं शिखर सम्मेलन। तो बट नेचुरल है कि जहां राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों उस मीटिंग की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना। इसके बाद दूसरी मीटिंग लेवल की मीटिंग हो सकती है कि विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, इसके बाद मीटिंग उसके नीचे लेवल की हो सकती है कि विदेश सचिव की मीटिंग हो रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो इसके बारे में फिलहाल हम लोग कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक पर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। इसके बाद एक खबर आप लोगों ने और सुनी है फ्रेंड्स कि स्कॉटलैंड, ये बेसिकली इंग्लैंड का एक हिस्सा है ना। जैसे देश का नाम तो देखिए ब्रिटेन है, हम लोग इंग्लैंड बोल देते हैं, इनफैक्ट देश का नाम ब्रिटेन है, उसका एक हिस्सा इंग्लैंड का है, दूसरा हिस्सा स्कॉटलैंड का है, तीसरा आयरलैंड का है, तो ये उसके अलग अलग हिस्से हैं। तो स्कॉटलैंड उसका एक हिस्सा है ना, जो ब्रिटेन का ही भाग है। तो वहां के कुछ लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको मालूम है कि ब्रेग्जिट पर हम लोगों ने बात भी की है कि ब्रिटेन अब यूरोपीय समुदाय से अलग हो रहा है, तो उन्होंने एक यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मतलब ये जो यूरोप के जो जितने देश हैं, जो यूरोपीय समूह के देश हैं, उनका अपना अलग से पार्लियामेंट है और इनका अलग से अपना कोर्ट भी है। सभी देशों के अपने अपने कोर्ट हैं, लेकिन यूरोपीय देशों का एक सामूहिक कोर्ट भी है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहां वो इस मामले को लेकर के गए हैं। उनका कहने का अर्थ केवल ये है कि भाई ठीक है, ये एक समूह में था इंग्लैंड और ये अलग होने का फैसला कर लिया इसने, तो समूह में होने के बाद क्या अकेले आप फैसला कर सकते हैं कि हम इस ग्रुप को छोड़ रहे हैं? तो अब देखिए कि क्या निर्णय आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मतदान हुआ था कि ब्रेग्जिट यानी कि हमें यूरोपियन यूनियन में रहना है या छोड़ना है, तब बकायदे स्कॉटलैंड के लोग इसका विरोध कर रहे थे, मतलब वो लोग चाह रहे थे कि हम यूरोपियन समूह के सदस्य बने रहें। तो ये एक छोटी सी खबर है। एक जो बड़ी खबर है दोस्तों, वो है खासकर मंगल ग्रह पर यान का पहुंच जाना। और आपको मालूम है कि जो नासा है वो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है एक तरीके से, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसने एक यान भेजा था इनसाइट लैंडर, उसका नाम इनसाइट लैंडर, वो बकायदे मंगल ग्रह पर उतर गया है। तो पहले मैं थोड़ी सी बात आपको मंगल ग्रह के बारे में बता दूं कि ये सौर मंडल आप जानते हैं, जो सूरज है उसका नाम है सौर, सूरज उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो सौर मंडल के मेंबर्स माने जाते हैं। तो उसका पहला तो सूर्य, तो उसका एक आप कह लीजिए कि माता पिता हो गया। और इसके बाद सूर्य के जो सबसे निकट है, जो ग्रह जिसे हम प्लैनेट कहते हैं, वो है मरकरी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं बुध। इसके बाद जो दूसरे स्थान पर है उसके बाद वह है वीनस, जिसे हम कहते हैं शुक्र। इसके बाद तीसरे स्थान पर हम है, जिस पर हम रह रहे हैं पृथ्वी। और चौथे स्थान पर है मंगल, यानी कि जो सूर्य से दूरी, ये है मंगल। और इस मंगल ग्रह की खासियत यह है कि यह लाल रंग का है, बिल्कुल रेड लग दिखाई देता है। और उसका कारण यह है कि आयरन ऑक्साइड वहां बहुत है, और आयरन ऑक्साइड के कारण उसका रंग जो है लाल है। जैसे आप जंग लग जाता है ना, देखिए किसी में, तो उसका रंग लाल हो जाता है, लगभग लगभग उसी तरह का रंग मंगल ग्रह का है। मरकरी के बाद यह दूसरा छोटा ग्रह है, और इसके दो चंद्रमा है कहते हैं, जिसे आप कह लीजिए कि उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, इसी तरह से मंगल के दो चंद्रमा है, एक है फोबोस PHOBOS और दूसरा है डेम्स DIEMOS। ये इसके दो चंद्रमा है। यहां पानी नहीं है, उसका कारण यह है कि हवा का दबाव बहुत ही यहां कम है, मतलब पृथ्वी के 1% से भी कम है, इसीलिए यहां पानी नहीं है। ये जो ग्रह है अपनी धुरी पर 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है, और सूरज का एक चक्कर लगाता है ये 687 डेज में, 687 दिन में। आपको मालूम है कि पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, और अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, ये मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी सी बातें थी, और मैंने जानबूझकर के ये बातें इसलिए बताई है कि जब कोई भी इस तरह की घटना होती है, तब यूपीएससी में सीधे सीधे उस घटना पर नहीं पूछ लिया जाता, उससे जुड़े हुए जो दूसरे इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो चूंकि यान मंगल ग्रह पर उतरा है, तो स्वाभाविक है कि यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपने कम से कम इतनी सतर्कता तो दिखाई ही होगी कि आप मंगल ग्रह के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, राइट। और आपको मैं यहां यह भी बता दूं कि यह इनसाइट पहली बार ही मंगल ग्रह पर नहीं उतरा है, बल्कि 2012 में नासा ने एक और उपग्रह भेजा था जिसका नाम था क्यूरियोसिटी रोवर। वह भी 2012 में मंगल ग्रह पर उतर चुका है। वो आठवां यान था, ये नौवां यान है, और इससे पहले जो सात यान भेजे गए वो सब के सब फेल हो गए थे, यानी कि कोई वहां उतर नहीं पाया था। अब थोड़ी सी दूसरी चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें यूपीएससी डाल देती है। तो एक तो धरती से जो मंगल ग्रह की जो दूरी है वो लगभग 16 करोड़ किलोमीटर है, 16 करोड़ किलोमीटर। और इस 16 करोड़ किलोमीटर को की दूरी को तय करने के लिए इस यान ने 7 महीने में 48.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। अब उसको गोल गोल घूम करके जाना पड़ता है ना, ये दूरी और उस दूरी में थोड़ा सा फर्क होगा, तो 48.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये भी आपको जानना चाहिए। वहां यह यान लगभग 2 साल 2 महीने रहेगा, 26 महीने रहेगा। इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उपकरण लगाया गया है, यानी कि मशीन जो लगाई गई है, वो है सिस्मोमीटर। आप जानते हैं कि सिस्मोमीटर, जिससे कि हम भूकंप को मापते हैं, और ये जो सिस्मोमीटर है ये इस बात का पता लगाएगा कि ये जो मंगल ग्रह है ये धरती से क्यों अलग हुआ, और इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। इसमें एक टाइम मशीन भी लगी हुई है, और वो ये पता करेगी कि लगभग 4.5 अरब साल पहले जो मंगल ग्रह है, धरती ग्रह है, चंद्रमा है, ये पथरीले कैसे बन गए। तो इस तरीके से बहुत सारी बातों की जानकारी इस मंगल ग्रह के जरिए हमें मिलेगी। तो दोस्तों, ये मंगल ग्रह के बारे में है, और देखिए शायद इस पर अब कुछ एडिटोरियल्स आए, तो बस मैं इतना जरूर यहां बताना चाहूंगा और कि जब भी आपको अब मंगल ग्रह और इस इनसाइट के बारे में कुछ पढ़ने को मिलता है तो आप थोड़ा ध्यान देकर के उसे पढ़ें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उन्हें आप नोट भी कर लें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। देखिए, विश्व कप हॉकी जो है ना वो उड़ीसा में शुरू हो गया, उस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। अब क्योंकि वक्त कम है तो सीधे हम अर्थशास्त्र की बात करें। आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए, यूपीएससी के सिलेबस और एग्जामिनेशन के फिर जो अनसॉल्व पेपर है उनको देखिए, एक अंतर आपको बहुत साफ नजर आएगा और वो ये कि प्री एग्जामिनेशन में तो अर्थशास्त्र पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मेंस में अर्थशास्त्र पर प्रश्न नहीं पूछे जाते, अर्थव्यवस्था पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया विषय का सैद्धांतिक ज्ञान और अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया उस सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक पक्ष, राइट। तो यानी कि अब इससे क्लियर है कि आपको दोनों की ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को ही आपको क्वालिफाई करना है, सफल तो दोनों में होना है, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान आपको हासिल करना है और अर्थव्यवस्था का भी। मित्रों, जो मैंने आज का ये विषय चुना है कि अर्थशास्त्र को आप कैसे समझेंगे, इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं अपने पैटर्न को थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ले जा रहा हूं, आप लोगों ने भी अब थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू कर दिया होगा, खासकर डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से। अब मैं थोड़े से आपको व्यावहारिक तैयारी कराने को ज्यादा पक्ष में हूं। कल मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड किया था, सस्ते तेल की तैयारी, आप लोगों को याद होगा, ये आप निकाल लीजिएगा और इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। और खासकर जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि अगर वो नहीं समझ पा रहे हो, आप समझेंगे, एक दो को तो आप बहुत आराम से समझ लेंगे, तीसरे चौथे जो प्रश्न है उन्हें भी आप समझ लेंगे, बस उतना आराम से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसका सूत्र वही है, फार्मूला वही है जो यहां आपको सिद्धांत बताए गए हैं कि किस तरीके से मांग और पूर्ति बाजार की सबसे शक्तिशाली ताकत है और वही सभी चीजों का निर्धारण करती है। ये मैंने आपको सूत्र पकड़ा दिया है, राइट, और केवल उसके आधार पर आप, अब जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं उनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, पॉइंट्स नोट कीजिए। तो मित्रों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कल जो मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी के कोई दो प्रश्न दिए थे उसके बारे में क्लास स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं। और रश्मि यादव, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत परफेक्ट तरीके से उसके उत्तर को सोचा है और इस आप लोगों के इस उत्तर ने, सच पूछे तो आप लोगों से ज्यादा मुझे खुशी प्रदान की है कि नहीं, आप लोग यहां से जो सीख कर जा रहे हैं उस बकायदे परंपरा को या उस सिस्टम को बनाए हुए हैं और आगे भी मजबूत बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वक्त कम है इसलिए मैं इसके उत्तर अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन कल मैं इस पर आप लोगों से जरूर बात करूंगा। फिलहाल आप प्रश्न नोट कर लीजिए और ये हिस्से आपको उसी आर्टिकल में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, बहुत हद तक, सेकेंड पैरा में मिलेगा, बहुत हद तक यह भी संभव है कि भारतीय रिजर्व बैंक इसके चलते ब्याज दरों में कटौती करे, क्योंकि ऐसा करने से निवेश और वृद्धि को बल मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, जो थर्ड पैरा है, थर्ड पैरा के बीच शुरू हुआ है एक वाक्य, ये सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत संभव है कि इस गिरावट के बाद एक बार फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना आरंभ करें, राइट, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, चौथे पैरा में है कि एफपीआई की आवक में इजाफा, एफपीआई की आवक में इजाफा रुपए और डॉलर की विनिमय दर पर नकारात्मक असर डालेगा और बहुत संभव है कि यह भारतीय निर्यात में सुधार को भी प्रभावित करे। इसके बाद दोस्तों, चौथा और आखिरी प्रश्न है जो पांचवें पैरा के नए पैराग्राफ में है, सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि तेल कीमतों में इस गिरावट का उसके राजकोष पर क्या असर होगा। ये चार क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और मैं चाहूंगा कि इस पर आप सब विचार करें, कल इस पर मैं आप लोगों से बातें करूंगा। एक तथ्य में और आप लोगों को से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जैसे मैंने आज ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, इस पर काम आज ही आप कर लें, कल तो मैं बात कर लूंगा तो फिर आपको, आपके पास करने को कुछ नहीं रह जाएगा। मैंने देखा कि स्टूडेंट तीन तीन चार चार दिन बाद तक उसके बारे में मेल लिखते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, है ना, उतना समय नहीं है कि आप तीन तीन चार चार दिन लेट चलें। यह यूपीएससी की तैयारी करने का तरीका नहीं है और यह बात कहने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। तो फिर आप लोग अपने ढंग से करते रहिए, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। सबकी स्थितियां अपनी अलग अलग रहती हैं, लेकिन उसके लिए फिर मुझे सूचित करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि उसका मेरे लिए फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम लोग तो आगे बढ़ चुके होते हैं उस विषय को छोड़ करके, तो इतना इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने ढंग से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं सुनीला मिंज, पुरुषोत्तम कुमार, रंजीत कुमार, खुर्शीद आलम अस्का ओडिशा से, गोलू शुक्ला और रश्मि यादव। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।